जिंदा है तेरा नाम मोहम्मद अली नकवी, जारी है तेरा काम मोहम्मद अली नकवी।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीफ उस अल्लाह की जो तारीफ के लायक है और जिसके अलावा कोई तारीफ के लायक नहीं और जिसके अलावा किसी और की तारीफ मुमकिन ही नहीं। और दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जिसके सदक़े में परवरदिगार ने इस कायनात को शर्फ़ वजूद बख्शा है, जो अल्लाह ताला की तमाम सिफात जमाल व जलाल का आईना है। और दुरूद व सलाम है उनके पाक जानशीनों पर जिनमें से आखिरी के हम मुंतज़िर हैं। आप सब मिलके दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई मेरा तकरीर का इरादा नहीं है, चंद गुजारशात आपकी खिदमत में मुझे पेश करना है। पहले तो मैं आईएसओ के मरकज़ी सदर के जनाब आरिफ हुसैन और इनके साथियों के इस वीएन को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिससे मेरे नहायत ही मोहतरम अज़ीज़ भाई जनाब सैयद हुसैन नजफ़ी साहब पेश कर रहे थे, और वो है इत्तेहाद उम्मत और वहदत मिल्लत के हवाले से आपकी कोशिशें। तो मैं उसे खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि इस पर इस्तकामत से आगे बढ़ें और कायम रहें। इस राह में मुश्किलात हैं, हौसला शिकनियाँ हैं, तोहमतें हैं, इसको बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन राह यही दुरुस्त है। इस पर इस्तकामत के साथ आप भी और आपके बाद आने वाले हमारे साथी इसी रास्ते, यही मोहकम और सही रास्ता है। और वाकई मौलाना ने दुरुस्त फरमाया कि हबलुल्लाह मतीन का रास्ता। मैं हमारी बड़ी मोहब्बतें रही हैं और अब भी हैं मरहूम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना करामत अली नजफ़ी साहब के साथ, और आज उनके साहबजाद गान के साथ भी उसी तरह से। आपने जो आईएसओ के लिए कन्वेंशन के मौके पर जो एहतमाम किया, मैं अपनी आंखों से देख के आया। आपसे मुलाकात की ख्वाहिश थी, वहाँ आपकी ज़्यारत नहीं हो सकी। आप बरादरान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने जैसे बाजू फैलाए हैं इन अज़ीज़ों के लिए, आपकी मोहब्बतें और एहतराम पहले भी कम नहीं था हमारे दिलों में, अब ये और भी बढ़ गया है। हमेशा एक अच्छा मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता इस ख़ानदान से रहा है, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। जामिअ अल-मुस्तफ़ा की तरक्की, इस्तेहकाम और नेक नामी के लिए हम दुआ गो हैं। इसके लिए एक दफ़ा आप सब मिलके दरूद भी पढ़ें मोहम्मद वाले। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको ये ज़रा सा ज़रीफ़ नुक्ता है इसके अंदर छुपा हुआ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आईएसओ वो मस्जिद है जो रोज़े अव्वल से तकवे की बुनियाद पर तामीर की गई है। आईएसओ वो मस्जिद है इस सरजमीन पर जो रोज़े अव्वल तकवा की बुनियाद पर तामीर की गई है। अपना रुख इसकी तरफ रखिएगा, इसको आबाद शाद रखिएगा, और इसे कमज़ोर करने वालों को समझाने बुझाने की कोशिश कीजिएगा। इसी की तरफ इसको मजबूत करना जो है पाकिस्तान में सरजमीन, इस सरजमीन पर तकवे का एक मज़हर ये है कि इसके इस्तेहकाम के लिए काम किया जाए। ये वो मस्जिद है जो पहले ही दिन से तकवा की बुनियाद पर मार्ज वजूद में आई है। आईएसओ को ये शर्फ हासिल रहा है कि इस सरजमीन पर सबसे पहले इसने इनकलाब इस्लामी ईरान को खुश आमदीद कहा है। आईएसओ को ये शर्फ हासिल रहा है कि इसने हज़रत इमाम खुमैनी की नहजत और तहरीक को सबसे पहले इस मुल्क में मुतारफ़ करवाया है, उसकी हमायत में बाहर निकली है। उस वक़्त जबकि ہمارے مومنین ابھی اس کو نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ شاعران کی حمایت کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے ایک شیعہ ریاست ہے، یہ لوگ اسے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آئی ایس او کو اللہ نے یہ دل و دماغ عطا کیا، اور ہمارے بزرگ علماء جو اس وقت سرپرست تھے ہمارے، وہ بھی اسی راستے کے راہی تھے، اور انہوں نے بھی ہماری اس راستے پہ رہنمائی کی۔ آئی ایس او کو یہ سبقت حاصل ہے۔ آئی ایس او اس لحاظ سے بھی السابقون الاولون کا مصداق ہے کہ اس نے سبقت کی ہے اس نہضت کو جوائن کرنے میں۔ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ اب یہ نیکیوں کی طرف سبقت کو باقی رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا جو ظہور کے مقدمات، تو بالکل میرے برادر عزیز اور محترم جناب سید حسنین عباس گردیزی نے صحیح توجہ دلائی ہے کہ انقلاب یہ جو ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں اب چونکہ اس شہادت کے بعد مجھے نصیب ہوا اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کرنا اور ملی یکجہتی کونسل کے وفد کے ساتھ جانا، میں اس چیز کا شاہد ہوں، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ انقلاب کی رفتار اس شہادت کے بعد کچھ تیز ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر بھی، ایران کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ انقلاب اب سری رفتار ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم اس انقلاب کا پاکستان میں بازو شمشیر زن ہیں، تو ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا سستیوں کو چھوڑ کے ذرا تیز رفتار ہونا ہے، اپنے قدم کو ذرا مضبوطی سے بھی اٹھانا ہے اور ذرا نسبتاً تیزی سے بھی اٹھانا ہے۔ اور اس کے اثرات پوری دنیا میں نظر آئے ہیں، اور پاکستان لاہور کی سرزمین پہ جنہوں نے دیکھا، اور باقی جگہ پہ ایک طویل عرصے کے بعد، جس کو کہتے ہیں نا فارسی میں خود جوش، لوگوں کا خود سے پورے جذبے کے ساتھ باہر نکل کے آنا، اس ایک طویل عرصے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انقلاب اب تیز رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے میں، چونکہ یہ سابقین یہاں پہ موجود ہیں، جن کو پتہ ہے وہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر شہید 1977 میں آئی ایس او کے مرکزی صدر تھے، اور میں 1978 میں آئی ایس او کا مرکزی صدر بنا، پھر 1979 میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ کے علم میں ہے کہ نجف اشرف میں 1977 میں کچھ انقلاب، اور ایران کے اندر کچھ تھوڑی سی لہریں اس کی نمودار ہوئی تھی۔ 1978 میں آیت اللہ شہید مصطفیٰ خمینی کی شہادت نجف اشرف میں ہوئی، تو پھر یہ انقلاب ایک تیز رفتار اور ایک اٹھان کے ساتھ سامنے آیا۔ حضرت امام خمینی کے بڑے فرزند شہید اور مفسر قرآن آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے بعد، اور اس کے بعد امام خمینی جو ہے وہ 6-7 ماہ کے لیے پیرس میں تشریف لے گئے، تو ایران میں پھر اس کے بعد ایک پوری ایک نئے ولولے کے ساتھ انقلاب جو ہے وہ شروع ہوا، اور پاکستان میں آئی ایس او کو ہمیں یہ اللہ نے سعادت بخشی کہ ہم اس انقلاب کے ساتھ ساتھ نکلے۔ ہم سڑکوں پہ گئے، ہم حوالات میں گئے، ہم نے ماریں کھائیں، ہم نے جد و جہد کا آغاز کیا، اور آج پھر وہ انقلاب نئی لہروں کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ آئی ایس او کے سابقین سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ انتظار نہ کریں کہ آئی ایس او کے ساتھی آپ کو کہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ خود سے آگے بڑھیں آئی ایس او کی تقویت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اور اس کی توسیع کے لیے پوچھیں کہ ہماری کیا خدمت ہو سکتی ہے اور ہم کیا آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ شجرہ طیبہ ہے، اور پاکستان میں میں اس کا شاہد ہوں، جو قریب سے جانتے ہیں وہ اس کی شہادت دیں گے کہ پاکستان میں کم از کم ملت تشیع میں 90% جو نیک کام اس پچھلی 4 دہائیوں میں ہوئے ہیں، اور خیر کے اور اجتماعی کام ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے آئی ایس او ہے، اس کے سابقین ہیں، اور ان کی خدمات کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ یہ علماء کی طرف سارے کے سارا جتنا جوانوں کی رغبت ہے، پاکستان کے اندر اس کا سہرا آئی ایس او کے سر سجتا ہے۔ تو اس کو اب یہ ہماری میراث ہے، اس چیز کو बाकी भी रखना है, इसको आगे भी लेके जाना है। खुद आईएसओ के जो साथी यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके साथी आईएसओ के मौजूदा अहदेदार गए हों साबकीन में से किसी के पास और उसने तआवुन ना किया हो। लिहाजा ये दो तरफा बात है, आप जाइए इनके पास, आप कहिए कि आप हमारा साथ दें जहां आपको तआवुन की ज़रूरत है। अलबत्ता हर एक का अपना ज़ौक मिजाज तरजीहात होती हैं, जो किसी की फील्ड है उसके अंदर उससे तआवुन मांगिए, तालीम में भी, सेहत में भी, इज्तमाहियात में भी, बाकी मालियात में भी, जो कुछ कोई कर सकता है आपके साथ। आईएसओ एक ऐसी चीज़ है, मेरा तजुर्बा है, और आप में से बहुत सारे सारे के सारे बल्कि इसकी शहादत देंगे, ये दिल में आती तो है जाती नहीं, ये रह जाती है दिल में, ये नहीं जाती, इसकी मोहब्बत हमारे वजूद को महकाती रहती है। ये वो गुलाब है जो उगता है तो फिर महक देता है, ये ख़त्म नहीं होता, ये दिलों के अंदर मौजूद है। जो मौजूदा आईएसओ है वो आजमा के देखे, वो जाए अपने साथियों के पास और उनसे तआवुन के लिए कहे। इंशाअल्लाह परवरदिगार हमें तौफीक दे। शहादतों का रास्ता अंबिया का रास्ता है, औलिया इलाही का रास्ता है। ये खबरें कई जगह से आ रही हैं और मैं उसको बड़ी एक अरसे से देख रहा हूँ कि हमारे बाद औलिया और उरफा ये कहते हैं कि सॉफ्ट ज़हूर हो चुका है और उसकी बहुत सारी अलामतें मौजूद हैं। एक किताब हमने छापी है अलबसीरा, जो हमारा इदारा है, उसके तहत यमन अलमिया से अलम यमानी तक जो किबला फरमा रहे थे, उसके अंदर इसकी चीज़ें, इसके बारे में शवाहिद मौजूद हैं कि यमन अलमिया से अलम यमानी तक कि कैसे ये अलम यमानी की तरफ जो है ये नहजत और ये इनकलाब यमन का बढ़ रहा है। इसी तरह वो खुरासानी की क्यादत में उठने वाले स्याह परचमों का जो इनकलाब है उसके लिए जो अलामतें हैं बिल्कुल हैरान कुन हद तक पूरी होती चली जा रही हैं। आखिरी एक बात उसमें करके मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मैंने अहले सुन्नत की भी सही रिवायात में और अहले तशय्यो की मतून में भी ये बात देखी है कि नबी पाक सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे और आपने फरमाया कि मैं अर्श के गिर्द, अर्श के दाईं तरफ ऐसे नूरानी कुछ नूरानी चेहरे देख रहा हूँ। तो सहाबा ने पूछा, अहले सुन्नत की रवायात में है कि हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये कौन है, तो नबी पाक ने फरमाया ये रूहुल्लाह के आशिक हैं, ये रूहुल्लाह के आशिक हैं। गौर कीजिएगा, हज़रत अली से जो रवायत है वो उसमें ये है कि जो बिहार में और बाकी हमारी रिवायात में आई है कि मौला अली से नबी पाक ने फरमाया है अली ये तेरे शिया हैं। लिहाजा अब कोई कंफ्यूज ना करे इस रवायत को, रूहुल्लाह नाम का कोई ऐसा लीडर नहीं आया जिससे लोगों ने बेपनाह मोहब्बत की हो सिवाय सैयद रूहुल्लाह मूसवी अल-खुमैनी के, और इनके आशिकों को नूरानी चेहरे के साथ नबी पाक ने अर्श के दाईं जानब देखा है। ये अहले सुन्नत के यहाँ रिवायात हैं, ये मेरे अजीजों मैंने और आपने नहीं लिखी, आज से 1200-1300 साल पहले मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में ये रवायत लिखी है। ना कोई सियासी लीडर आया, ना कोई हाकिम ऐसा आया, ना कोई खलीफा ऐसा आया जिससे लोगों ने ऐसे बेपनाह मोहब्बत की हो और उसका नाम रूहुल्लाह हो। ये सैयद रूहुल्लाह मूसवी है जिससे लोगों ने उसकी ज़िंदगी में आशिकाना मोहब्बत की है और उसके जाने के बाद भी आशिकाना मोहब्बत की है और उसकी नहजत के साथ भी लोगों की आशिकाना मोहब्बत है। ये रूहुल्लाह मूसवी का आया हुआ इनकलाब है, इसने हर सूरत में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के इनकलाब से मुलाक़ होना है। इंशाअल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।